اس کی شان ہو، جو خریدنے والا ہے اس کی نہیں. اور یہ کیسے ہو؟ لوک تنتر کے سندرب. اب لوک تنتر کیا ہے؟ لوک تنتر بہو مت کا تنتر ہے، بہو سنکھیا کرنے کا. اس کو بھی سمجھ لیجیے، لوک تنتر سنکھیا کا تنتر نہیں ہے، مت کا تنتر ہے. آج کا الپ مت کل کا بہو مت ہو سکتا ہے. کل کا جو بہو مت تھا وہ آج الپ مت ہو سکتا ہے. یہ لوک تنتر کی وشیشتا ہے، اسی میں لوک تنتر کے رومانس ہے، رومانچکتا اسی میں لوک تنتر کی ہے، اسی میں اس کی خوبصورتی ہے کہ وہ مت کا تنتر ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ واز ناٹ گراس تھا پکوک کا دوست. ایک دن پکوک سے اس نے سوال پوچھا کہ جب کسی بات میں شنکا ہو تو کیا کرے. اب پکوک بڑا حاضر جوابی تھا، بہت حاضر جوابی، پارلیمنٹ میں رہ چکا تھا، تو جواب کیا دیتا ہے؟ When in doubt, follow the mob. جب شک ہو تو بھیڑ کے پیچھے دوڑو. اتنے سے تو حل نہیں ہوتی سمسیا. And if there be two mobs, اور دو بھیڑیں ہو تو کیا کریں؟ پکوک نے کہا فالو دا لارجسٹ، جو سب سے بڑی بھیڑ ہو اس کے پیچھے جاؤ. اس کا نام ہم نے لوک تنتر کیا. یہ لوک تنتر نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈیموگاگی اس کا نام ہے، ماباکریسی. یہ بھیڑ کا تنتر ہے، لوک کا تنتر نہیں. آج کی بہو سنکھیا کل کے الپ سنکھیا نہیں ہو سکے گی. یہ اچھوت کبھی بہو سنکھیا نہیں ہوں گے. یہ پارسی، یہ یہودی، یہ سکھ، یہ کبھی بہو سنکھیا نہیں ہوں گے، لیکن ان کا مت بہو مت ہو سکتا ہے، ان کا مت الپ مت ہو سکتا ہے. اس کو سمجھ لینے کی آوشیکتا ہے. دوسری چیز، ویرودھی مت کی شان، الپ مت کی ارتھات ویرودھی مت کی شان یہ لوک تنتر میں. یہ ساہس لوک تنتر کے سوا کسی دوسری پدھتی میں نہیں ہے. یہ الپ مت کی بھی شان ہو، بھن مت کی بھی شان ہو. وہ کیتھولک چرچ میں ایک ڈگنیٹری، ایک ادھیکاری ہوتا ہے جس کا نام ہے ایڈوکیٹس ڈایابولی، شیطان کا وکیل. بھگوان کے دربار میں اگر شیطان کا وکیل بات نہ کر سکے تو وہ دربار بھگوان کا نہیں، وہ شیطان کا ہو جائے. اسی طرح سے لوک تنتر میں بھن مت کی شان، بھن مت دبایا نہیں جاتا، اس کو بہومت بننے کا اوسر ملنا چاہیے. الپ مت کو بہومت بننے کا اوسر ملے، یہ لوک تنتر کی شان. اب اس سندرب میں کرانتی کر دی تو کیسے؟ مارکس نے 1848 میں کمیونسٹ مینیفیسٹو پرکاشت کیا، उसका एक फ्रेंच संस्करण लिखा, उसकी भूमिका एंगल्स ने लिखी। उस भूमिका में एक बात उसने बड़ी मार्गे की कही, बड़ी पते की बात। सवाल पूछा है कि इंग्लैंड में, अमेरिका में और फ्रांस में, इन देशों में तो लोकतंत्र है, और जहां लोकतंत्र है वहां बहुमत तो गरीबों पर, उन्हीं की संख्या अधिक है और उन्हीं का मत अधिक है। फिर क्या वजह है कि वहां पर गरीबों का राज नहीं होता है? जहां गरीबों की राय ज्यादा है, वोट ज्यादा है, वहां गरीबों का राज न हो, इसका क्या कारण है? इसलिए एंगल्स ने कहा है कि मैं तो ऐसा मानता हूं, वो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ तो भी बताऊंगा, लेकिन उसने कहा ये, इंग्लैंड फ्रांस और अमेरिका में कोई जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं होगी, वहां तो पार्लियामेंट्री पद्धति से ही क्रांति हो जाएगी, क्योंकि संख्या और मत गरीबों का अधिक। लेकिन यह होते हुए भी लोकतांत्रिक पद्धति से गरीबों का राज क्यों नहीं हुआ आज तक? एकमात्र कारण यह है कि लोकतंत्र का नीलाम हो गया, उसको रोकने की आवश्यकता है। यह क्रांति का मुख्य कार्यक्रम है। इस चुनाव में आपने सुना होगा कि किसने कितने करोड़ रुपए खर्च किए और दल बदल के लिए किसको कितने रुपए दिए गए। अब वो तो मैं आंकड़े सुनता हूं तो घबरा जाता हूं, ये तो आंकड़े भी मेरी समझ में नहीं आते। लेकिन इतने पैसे अगर इन लोगों के पास हो तो मैं हैरान हूं। वो विंसेंट रिचर एक किस्सा सुनाया करते, एक मेंबर से कहा कि हमारी पार्टी में आ जाओ तो 40,000 रुपए देंगे और मिनिस्टर बना देंगे। वो आ गया, उसको मिनिस्टर बना दिया, सिर्फ 20,000 रुपए दिए। अब वो पब्लिक मीटिंग में कहता था कि देखिए कैसे बेईमान लोग हैं, 40,000 कहा और 20,000 दिए। जैसे प्रोफेशनल मोरालिटी होती है ना, ऐसे पॉलिटिकल मोरालिटी भी होती है। मेरा बेटा वकील है, झूठा मामला भी किसी का ले ले तो फिर वो उसी को चलाता है, ये प्रोफेशनल मोरालिटी है। वैसे पॉलिटिकल मोरालिटी होती है। तो इसको समझ लीजिए कि इतने पैसे क्यों खर्च हुए, कैसे खर्च हुए इस चुनाव में, और खर्च हुए तो गुनहगार कौन है? मित्रों, गुनहगार नागरिक है, वोटर, जो इतने पैसे खर्च कराता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे नौजवान खड़े हो जाए जो ये कहेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उम्मीदवार होगा उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा। गुजरात में एक डॉक्टर खड़ा हुआ, पैदल चला, साइकिल पर गया, लोगों के पास गया, उसके मतदाताओं ने एक एक रुपया दिया, कुछ खर्च नहीं हुआ, वो चुना गया, क्योंकि मतदाताओं ने वो भी दिया था, एक एक रुपया दिया उनका। क्या यह चीज नहीं हो सकती है? ये होगी तब होगी जब ये लोकतंत्र उम्मीदवारों का नहीं वोटर का होगा। ये लोकतंत्र मतदाता का मित्रों राजनीति कीजिए, राजनीति आवश्यक है, लेकिन राजनीति मतदाता की हो, राजनीति कैंडिडेट की नहीं। गांधी राम राज कहा करता था ना, अब राम राज का क्या लक्षण था? राम लक्ष्मण भरत शत्रु चारों के चरणों में राज आया, एक ने भी नहीं लिया। सबने कहा कि मैं, मुझे भी चाहिए। भरत तैयार हुआ लेकिन राम की पादुकाएं लेकर प्रतिनिधि के रूप में। राम राज जितने हकदार उनमें से उम्मीदवार कोई नहीं, राम राज जितने हकदार उतने उम्मीदवार राम राज। तो उम्मीदवारों का लोकतंत्र, नागरिक का लोकतंत्र नहीं। इसको नागरिक के लोकतंत्र में बदलना है तो जगह जगह हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अब ये कोई पार्टी क्वेश्चन है, ये सबका काम है, मजदूरों का है, मालिकों का है, विद्यार्थियों का है, शिक्षकों का है, यूनिवर्सिटी का है, स्कूल का है, सबका है। पैसा खर्च न हो चुनाव, कानून से बंद नहीं हो सकता। लोग ये कहें कि जो पैसा देने आएगा वो उम्मीदवार, उम्मीदवार को हम नालायक समझेंगे। जो हमसे कहेगा कि हमारी होटल में चलो पान खाओ चाय पियो, उसको वोट नहीं देंगे। ये वोटर संकल्प करे तब मित्रों उसका लोकतंत्र होगा, उस गरीब का लोकतंत्र होगा जो परेशान है, जो मोहताज है, जिसको समाज परिवर्तन की आवश्यकता है। बस एक बात और कहूंगा, इसे बंद करूंगा, क्योंकि बात कहूंगा तो मैं थक जाऊंगा, आप ही कूद जाएंगे। उम्मीदवार के लोकतंत्र में क्या होता है? आश्वासन की भरमार। अकबर बादशाह एक दिन दरबार में आए, अब उस दिन शायद महल में बैंगन की तरकारी बनी थी, तो अकबर बादशाह ने कुछ ज्यादा खा ली, कुछ अच्छी बनी थी, चटकारे लेता हुआ आया। कहने लगा दरबारियों, तरकारियों में तरकारी तो बैंगन की है, ये तरकारियों का राजा है। अब दरबारी तो खैर तो दाढ़ी पर हाथ फेर कर टकराने के हुजूर बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसके ऊपर वो ताज मुकुट रख दिया, कौन सा वो हरा राजा होता है। सब कुछ में दूसरे दिन बादशाह आया, तरकारी कुछ ज्यादा खाती थी तो पेट में दर्द होने लगा, कि कम्बख्त ये बैगन सबसे रहती से तरकारी। फिर खड़े हो गए सारे दरबारी, हुजूर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए उसके ऊपर भगवान ने कांटे लगाए। तो लोग कहने वो राजा कहने लगा बादशाह, कल तो उसकी दाढ़ी पे पुल बांध रहे थे, आज उसे कोसे खिला रहे हो, तुम्हारी राय क्या है? हुजूर हम कोई पैगंबर के गुलाम है, तो आपके गुलाम है, आपका रोज देखकर बात करते हैं। मित्रों लोकतंत्र दरबारियों का तंत्र है, पॉलिटिशियन द दरबारी है। आज हमारे जीवन पर एक तरफ से दरबार और दूसरी तरफ से बाजार सवार है। बाजार और दरबार को हटाना है, परिवार बनाना है। ये लोकतंत्र सारे समाज को परिवार बनाना है, यह हथियार से होने वाला काम नहीं है। हथियार से सिपाही की क्रांति होगी, तिजोरी से धनवान की क्रांति होगी, सत्ता से सरकार की क्रांति होगी। सरकार सिपाही साहूकार की क्रांति नहीं चाहिए, क्रांति लोक क्रांति चाहिए। लोक क्रांति तलवार से नहीं होगी, ये कोई गांधी का सवाल नहीं है, लेकिन गांधी को इसका श्रेय है कि पहले पहल उसने इस तरफ ध्यान दिलाया। तब हमको लोगों को यह समझाना चाहिए कि जो ताकत दरबार में नहीं है, जो ताकत तिजोरी में नहीं है, जो ताकत तख्त में नहीं है, वो वोट में है। ये मतदाता को समझाइए, 77 और 80 में उसने अनुभव कर लिया। जो इंदिरा जी इतनी शक्तिशाली थी उनको हटा दिया, और जो जनता जेपी के नाम पर आई थी उसको भी हटा दिया। न जाति चली, न पैसा चला, ये शक्ति इसका एहसास, इसका प्रत्यय वोटर को दिला। और इसके साथ साथ एक चीज और चाहिए, वो यह चाहिए कि हिंसा की बराबरी का नहीं, हिंसा से बढ़िया कोई बल, किसी शक्ति हिंसा से बढ़िया किसी शक्ति को समाज में विकसित करना हो। शस्त्र से बलवान शक्ति, शस्त्र से बलवान कौन सी शक्ति है जो शस्त्र से नहीं डरती, जो हथियार से डरता है वो चाकू से भी डरेगा और तलवार से भी डरेगा। जिसने हथियार का डर छोड़ दिया उसको जीतने वाला दुनिया में कोई नहीं। उसको आप मार सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। उपवास करके मर गया, क्या कहा, वन आर्ड मैन कैन बी कॉन्कर्ड बाई टू, टू बाई ट्वेंटी, ट्वेंटी बाई टू हंड्रेड, टू हंड्रेड बाई ए ब्रिगेड, ए ब्रिगेड बाई ए लीजन, एंड ए लीजन बाई काउंटलेस लीजन्स। But not all the armies of all the empires of the world can crush the spirit of one true man. ये गांधी की खूबी थी। जिस देश के लोग नियत थे डरपोक थे, उनको सिखाया कि तुम्हारे पास तो एक ही रास्ता है, हथियार से डरना छोड़। तो हथियार वाला बेकाबू हो जाए। ये जो नॉन वायलेंस है, ये डायनेमिक है, पॉजिटिव है, पावरफुल है, एक्टिव। उसने कहा ना कि नॉन वायलेंस और द ब्रेव, मार पीट वाला कुछ करके दिखाता है, हमारी शांति अब तक निष्क्रिय रही, इसमें कोई गति नहीं है, कोई भावरूप शक्ति नहीं है, कोई सक्रियता नहीं है। तो जो लोग ये समझते हैं कि लोकतंत्र के साथ सैंक्शन, लोकतंत्र का सैंक्शन क्या होगा, सिपाही की तलवार होगी कि नागरिक का प्रतिकार होगा, सिपाही की तलवार नहीं होगी, नागरिक का प्रतिकार होगा। और वो प्रतिकार ऐसा प्रतिकार होगा जिसमें शस्त्र की आवश्यकता नहीं हो, तो वो सिविल रेजिस्टेंस नागरिक का प्रतिकार, और वो इन दोनों के सहयोग से, इन दोनों के जोड़ में से, इनके संयोग में से नागरिक की क्रांति अवतीर्ण हो। मित्रों, आज इस देश की जो स्थिति है, उस स्थिति में लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या करना होगा, मैंने आप लोगों के सामने रखा एक क्रांतिकारी की दृष्टि से। यह दृष्टि किसी पॉलिटिशियन की नहीं, यह दृष्टि नागरिक की है, क्योंकि नागरिक को क्रांति की आकांक्षा है, उसी की क्रांति होनी चाहिए। वो बूढ़ी स्त्री जिसके होठ है, वो बीमार जवान जिसके होठ है, वो बाबू जिसके होठ है, जो निहत्था किसान जिसके होठ है, उसकी क्रांति होनी चाहिए। और उसकी क्रांति होठ से हो सकती है, और किसी साधन की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता पड़ी तो सिविल रेजिस्टेंस अपनी जान अड़ा दे, ये एक ही उपाय है। इसके सिवा अब इस देश में कोई उपाय नहीं रह गया है। आज इंदिरा जी आई, कल और कोई आ जाएगा, परसों और कोई आएगा, परिस्थिति जो की त्यों बनी रहेगी। परिस्थितियां सरकारें नहीं बदल सकती है, सरकारें अनुकूलता पैदा कर सकती है, परिस्थिति को बदलता है नागरिक। आज तक जगह दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई, उनमें वो सब अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशंस, वो ऐसे दायशर ने लिखा कि अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशंस अपूर्ण क्रांतियां है। क्यों? इसमें नागरिक कहीं नहीं। आज तक इतिहास राजा ने बनाया, धर्म संस्थापक ने बनाया, वीर पुरुष ने बनाया, योद्धा ने बनाया, ये सारे इतिहास के विधाता रहे, लेकिन नागरिक इतिहास का विषय है। लोकतंत्र वो साधन है जिसमें नागरिक इतिहास का विषय नहीं, विधाता बनेगा। यह न कहिए कि यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। 42 तक सब लोग कह रहे थे, 47 में अंग्रेज चला गया, नहीं होना पर होगा वाले चुप हो गए। आज इस देश की धरती पर एक भी राजा नहीं, दिल्ली में भी नहीं है और कहीं नहीं है। मेरे दादा इसे स्वप्न मानते थे, पूरा स्वप्न। यह स्वप्न क्रांतिकारी देखता है, आज का स्वप्न कल की वास्तविकता हो जाती है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, जो संभवनीय है उसको करने के प्रयास का नाम राजनीति है। रेवोल्यूशन इज द आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल, जो असंभव है उसको संभव बनाने की कला का नाम क्रांति है। यह तरुणों का दर्शन होता है, यह तरुणों का साहस होता है, यह तरुणों की हिम्मत और स्वप्न होता है। भगवान करे इस देश के तरुणों में यह प्रेरणा, यह बुद्धि और यह हिम्मत पैदा हो। आप सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार। मैं किसी विचार या मत का प्रचार नहीं करता, मैं प्रचारक नहीं। और अब तो 80 साल का हो गया हूं तो जरूरत भी नहीं है। मनुष्य का विचार कोई साबुन की टिकिया नहीं है या चाय का डिब्बा नहीं कि जिसको बेचा जाए, जिसका प्रचार किया जाए। तो गांधी, मार्क्स या दुनिया की और कोई विभूति, किसी का प्रचार करने में मेरा विश्वास नहीं है। समाज की समस्याओं को देखता हूं, जहां तक हो अपनी आंख से देखता हूं, समझने की कोशिश करता हूं और मेरे दिमाग में जो रास्ते आते हैं उनको लोगों के सामने रखता हूं। मित्रों, मार्गदर्शन में मेरा विश्वास नहीं है। अब जरूरत रास्ता दिखाने की नहीं है, रास्ता खोजने की। पुराने रास्ते पुराने मुकामों पर ले जाएंगे। आज हमारा जीवन नया है। मार्क्स का जमाना 150 साल पहले का था, गांधी का भी जमाना पुराना हो गया। आज दुनिया जिस रफ्तार से बदलती है वो 100 गुनी रफ्तार है। 5 साल में जितनी तब्दीली आती है पहले 50 साल में भी नहीं आती थी। इसलिए पुराने आदमियों के रास्ते अब काम नहीं देने वाले हैं। हमको नई पगडंडियां खोजनी होगी और वो आप लोगों को खोजनी होगी जिनको जीना है। मैं रास्ता भी खोजूं तो इस लोक का नहीं होगा। इसलिए सिर्फ समस्या आपके सामने रख दूं, किसी विचार को बेचने या कोई रास्ता दिखाने में नहीं आया हूं। नुस्खा भी मेरे पास नहीं है। आज तो चौराहे चौराहे पर नुस्खा खोरों की दुकानें लगी हुई है और हर एक अपना नुस्खा बताता है। वो भी काम नहीं आने वाले हैं। उसके हालत क्या है? अमीर खुसरो दरबार में आया एक दिन और उसकी एक आदत थी दरबारियों की अकल की जांच बीच बीच में किया करता था। तो एक ने कहा मैं 3 सवाल पूछूंगा, जवाब एक ही होना चाहिए। सवाल पूछे, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़े, रोटी क्यों जली। बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान लोग बैठे हुए थे लेकिन उनकी सारी अकल किताबों में बंद थी। जो उनके दिमाग में विचार थे वो भी किताबों से उधार लिए हुए थे। अपनी सूझबूझ नहीं थी, किसी से कोई जवाब नहीं बना। एक गांव का गवार बैठा हुआ था कोने में कि हुजूर मैं कुछ अर्ज करूं। हां जरूर कहो, एक ही जवाब है तीनों सवालों का, फेरा नहीं गया, घोड़ा फेरा नहीं गया, अड़ गया, रोटी फेरी नहीं गई जल गई, पान फेरे नहीं गए सड़ गए। हमारे जितने सवाल हैं मित्रों, मजदूरों के हों, किसानों के हों, विद्यार्थियों के हों या और किसी दूसरे तबके के हों, एक ही सवाल है और उस सवाल का एक ही जवाब है, ये सब क्यों है, इन बीमारियों की जड़ कहाँ है, समाज की बुनियादें बदली नहीं है, समाज की बुनियाद क्या है। कल मैंने इशारा किया था, आज का समाज बाजार है, सब तरफ बाजार है, मंदिर में बाजार है, स्कूल में बाजार है, सरकार में तो बाजार है ही, घरों में भी बाजार बैठ गया है। दुनिया भर में दुकान ही दुकान है, मकान कहीं है ही नहीं, सब दुकानदारी ही है। इसलिए इस समाज की यह हालत है, हर चीज बिकती है। एक बड़ा सेठ था, दिवालिया होने लगा, बहुत नुकसान आया व्यापार में, तो एक एक चीज बाजार में ले जाकर बेचने लगा। आखिरी नौबत क्या आई कि देवता की मूर्ति सोने की थी, उसको भी बेचने के लिए सराफे में गया। गणेश जी की मूर्ति थी, सराफे में लेकर पहुंचा, सराफे ने देखा, पूछा क्या भाव लोगे। अब उन दिनों सस्ता था, 25 रुपये तोला खरीदूंगा, तो 25 रुपया बहुत होता था उन दिनों। ठीक है, 25 रुपया तो इस चूहे का भाव हो गया, अब गणेश जी क्या भाव खरीदेगा। गणेश जी और चूहा एक ही भाव, कोई अकल है। इतना बड़ा दुकानदार कहलाता है, कोई तमीज। तू कहता है कि गणेश जी और चूहा एक ही बात, अरे चूहा ये क्षुद्र जंतु है और गणेश जी देवता है, देवता और गणेश चूहा एक ही भाव। कहने लगा, अगर गणेश जी देवता होते तो मंदिर से उठकर बाजार में नहीं आते, और यह चूहा अगर क्षुद्र जंतु होता तो बिल में से निकलकर बाजार में नहीं आता। जिस दिन बाजार में आए, न गणेश जी गणेश जी है, न चूहा चूहा है, दोनों खालिस सोना है, दोनों का भाव एक ही। ये बाजार का तरीका है। बाजार में सौदा होता है, इसे लोग बड़ा नाम देते हैं कि ये पूंजीवाद है। कोई वाद वगैरह नहीं है, तरीका है बाजार, पूंजीवाद का तरीका बाजार है। हर चीज का व्यापार होता है, देवता का भी व्यापार होता है, जानवर का भी व्यापार होता है और मनुष्य का भी व्यापार होता है। सब बिकते हैं, सब खरीदे जाते हैं। पूंजीवाद में बाजार नहीं कह लीजिए, तीन इसके सीढ़ियां हैं, तीन कदम, सौदा सट्टा जुआ, एक के बाद एक। सौदा क्या है? कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा लो, इसका नाम सौदा। एक दफा मैं बाजार गया, वैसे बाजार वगैरह के सौदे में मैं बहुत कम अकल रखता हूं, तो एक रुपए की चीज मैं लेकर आया। माँ ने कहा कि तू बिल्कुल फूहड़ है, मुंह रखे कुछ जानता नहीं है। चार आने की चीज रुपए में लेकर आया। दूसरा भाई था, उससे कहा कि ये होशियार है तू जा। वो बाजार में गया और जो चीज में रुपए में लाया था चार आने में लेकर आया, और खूबी यह कि वो चौकी भी खोटी थी, नकली थी, तो वो होशियार कहलाया। जो कम से कम देता है और ज्यादा से ज्यादा देता है वो बाजार में होशियार, और जो कुछ नहीं देता और सब कुछ पाता है वो सबसे होशियार है। ये जुआ है, ये पूंजीवाद का नियम है मित्रों। मजदूर काम करता है, मालिक दाम देता है। मालिक कहता है ज्यादा से ज्यादा काम, कम से कम दाम। मजदूर कहता है ज्यादा से ज्यादा दाम, कम से कम काम। नतीजा मालिक दाम चोर है, मजदूर काम चोर। आपने देखा ना, लोग पूछते हैं कि नैतिकता का बड़ा पतन हो रहा है, वह हो कहां से? भ्रष्टाचार कैसे दिल्ली में, हर कारखाने में, हर मंदिर में है, हर स्कूल में। मास्टर कहता है कम से कम पढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा फीस, तनख्वाह। लड़के का बाप कहता है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई, कम से कम तनख्वाह। सब जगह एक ही नियम है। इसे वो शास्त्री लोग अपनी भाषा में स्वार्थों का झगड़ा कहते हैं, टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मेरा स्वार्थ और आपका स्वार्थ एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं और उनका टकराव होता है। इस टकराव को खत्म करने का नाम है क्रांति। समाज इस टकराव को बंद करना चाहता है। इसमें से कोई सभ्य नहीं हो सकता, कोई भला आदमी नहीं हो सकता है। करोड़पति होगा वो भी चोर है, क्योंकि दाम लगातार चोर का है, कम से कम दाम देना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा भी जो देता है मालिक, वो भी अपनी तरफ से कम देता है, यानी जितना देना पड़ता है उतना देता है। मजदूर जितना काम करना पड़ता है उतना करता है। इस टकराव को हम बंद करना चाहते हैं। समाज में जब तक यह टकराव रहेगा, दोस्तों इंसान इंसान को नहीं चाहेगा, इंसान इंसान का भाई नहीं बन सकेगा। मैं आपका भाई नहीं बनूंगा, आप मेरे भाई नहीं बनेंगे। शिक्षक विद्यार्थी का भाई नहीं बनेगा, विद्यार्थी शिक्षक का भाई नहीं बनेगा। हम क्या चाहते हैं? सब एक दूसरे के रिश्तेदार बने, रिश्तेदारी परिवार, एक ही जगह ऐसी है जहां सौदा नहीं होता और वो है परिवार। वहां रिश्ता है, सदस्य नहीं होते, मेंबर नहीं होते परिवार में, मेंबर बदल जाता है। आज इस कांग्रेस में, कल उस कांग्रेस में, परसों जनता में है, आज इस यूनियन में है, कल उस यूनियन में है, लेकिन रिश्तेदार नहीं बदलता। गांधी का बेटा शराब पीता था, घर से निकाल लिया, लेकिन गांधी बाप होने से इस्तीफा नहीं दे सकता था और बेटा बेटा के पद से इस्तीफा नहीं दे सकता। रिश्तेदारी में इस्तीफा नहीं। हम समाज को परिवार बदल लेना चाहते हैं। परिवार में क्या है? सबसे पहली चीज परिवार में है काम का धाम के साथ कोई संबंध नहीं। मां सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे कम खाती है। बाप सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे कम लेता है। बूढ़ा मेरे जैसा बिल्कुल काम नहीं करता, सबसे कीमती खाना खाता है। बच्चा कुछ नहीं करता, सब कुछ पाता है। परिवार में साझेदारी है, बंटवारा है। बेचना और खरीदना नहीं। परिवार का सबसे बड़ा गुण यह है, जवान बेटा लकड़ी चीरता है, सूखी रोटी खाता है। बूढ़ा बाप काम नहीं कर सकता, दूध के साथ नरम रोटी खाता है। परिवार मित्रों आध्यात्मिक संस्था है। इसमें मनुष्यता है, सभ्यता है, काम का धाम के साथ संबंध है। ये नई चीज अब समाज में आनी होगी, नहीं तो समाज नहीं बचेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मजदूर कहेगा मैं काम नहीं करूंगा, मेरा नहीं है, मालिक का काम है। मालिक कहेगा मैं काम नहीं कराऊंगा क्योंकि मजदूर को मैं ज्यादा देना नहीं चाहता, कारखाने बंद हो, उत्पादन बंद हो जाए, नुकसान किसका है? समाज का है, उसमें मजदूर और मालिक दोनों, लेकिन परिवार नहीं। मार्क्स ने एक नया शब्द चलाया, प्रोलेटेरियन। प्रोलेटेरियन क्या है? मजदूर। मजदूर किसे कहते हैं? जो काम करता है लेकिन मालिक नहीं, जो अपना काम नहीं करता, उसका नाम मजदूर। और जो काम खरीदता है उसका नाम मालिक। पूंजीवाद में वह यों तो सभी मालिक हैं और सभी मजदूर हैं। कोयले की खदान में काम करने वाला एक मजदूर रिक्शे में बैठता है तो रिक्शे वाले की मेहनत खरीदता है। उस वक्त ये मजदूर मालिक है, वो मजदूर मजदूर है। वो रिक्शे वाले से कहता है, आठ आने मांगता है, ये चार आने देना चाहता है। आप ये ना समझिए कि गरीब गरीब का शोषण नहीं करता है। पूंजीवाद ऐसी पद्धति है जिसमें हर एक मनुष्य हर एक का शोषण करता है, हर एक दिखता है, हर एक खरीदता है। जो बिकता है वो हैवान है, जो खरीदता है वो शैतान है। इन दोनों में से इंसान कोई है। अब हमको हैवानियत और शैतानियत की तरफ से इंसानियत की तरफ जाना है। खरीदने वाला सबसे बड़ा मालिक है, जो सिर्फ खरीदता ही है, बिकता कभी नहीं। चीज बेचता है लेकिन खुद कभी नहीं बिकता, वो मालिक है। जो कभी बिकता है कभी खरीदता है वो मजदूर है। अब हम क्या चाहते हैं? ये रिश्ता बदले। समाज में कोई मालिक नहीं होगा, कोई मजदूर नहीं होगा। एक राजा की 5 रानियां थी। एक दिन 5ों ने राजा से कहा, हमको सोने के झूले बनवा दीजिए। हम तो रानियां हैं, झूला भी सोने का और रस्सियां रेशम की डोरियां बनी हुई हैं। 5ों बैठ गई बनखन करने वाली हैं, वो सारी रानियां। बैठने के बाद सवाल ये हुआ कि झूला कौन झूला है? राजा ने शर्त लगा दी थी कि झूले बनवा दूंगा, डोरिया भी लगवा दूंगा रेशम की, लेकिन झूला झुलाने का जिम्मा मेरा नहीं। तब सवाल हुआ कि कौन झूला झूला? आखिर 5ों बैठी और 5ों ने तस्बीह किया, फैसला किया कि हम एक दूसरे को झुलाएंगे। 5ों के हाथों में रस्सियां और 5ों के झूले। कोई रानी नहीं, कोई नौकरानी नहीं। जो रानी वो नौकरानी, जो नौकरानी वो रानी, सभी रानियां सभी नौकरानी। मित्रों, इस समाज का सपना हम देख रहे हैं, जिसमें सभी मालिक होंगे, सभी मजदूर होंगे, सभी काम करेंगे, सभी आराम करेंगे। काम भी बटेगा, आराम भी बटेगा। ये कैसे हो? मैंने आपसे कहा कि खरीदने वाला शैतान है, लेकिन भगवान की कृपा से शैतान की कोई जाति नहीं। हर मालिक शैतान है और हर मजदूर हैवान है, क्योंकि वो बिकता है और मालिक खरीदता है। अगर शैतान है तो शैतान को खत्म क्यों ना कर दें? आसान है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है। हर गरीब अमीर बनना चाहता है, हर मजदूर मालिक बनना चाहता है, हर मजदूर बिरला टाटा बनना चाहता है। अगर वो हैवान है तो क्यों बनना चाहता है? रावण तो कोई नहीं बनना चाहता। हैवान नहीं है वो शैतान भी नहीं है और हम पूरे हैवान भी नहीं है। इसलिए कि हमारी औलाद वो है और उसकी औलाद हम है। हर अमीर गरीब की औलाद है और हर गरीब अमीर की औलाद है। हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। कोई अमीर ऐसा नहीं है जिसका पुरखा गरीब न रहा, और बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनके बेटे अमीर बन गए। तो अमीर और गरीब तो जातियां नहीं है दोस्तों, हम ही एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। इसलिए पहला संकल्प तो यह करना होगा, तब समाज बदलेगा कि हैवानियत खत्म होगी, शैतानियत खत्म होगी, लेकिन इंसान खत्म नहीं होगा, मनुष्य नहीं मारा जाएगा, मनुष्य की बुराई खत्म होगी, मनुष्य नहीं।